सर्वभूतेषु दयारूपेण समीस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः दुर्गा दुर्गति दूर कर हे मंगल करो सबका मन मंदिर उज्ज्वल करो माँ कृपा कर के आज भक्तों चामुंडा पराक्रम यह पावन कथा मां दुर्गा चरित्र की श्रोतागण बड़े ध्यान लगा करके सुने। संगीत कथावाचक गोवर्धन जोशी की आवाज में चामुंडा पराक्रम। भक्तों शुंभ और निशुंभ नाम के दो दैत्य इतने महान इतने अत्याचारी कि उनकी हत्याओं से ये पृथ्वी कांपने लगी। उनके अन्याय से मां बहनों की इज्जत आबरू खतरे में पड़ गई। कौन किसको पुकारे जिस हृदय को उधर हाहाकार होने लगा। उस समय धर्म का रखवाला पृथ्वी पर कोई नजर नहीं आया। लेकिन उस समय शुंभ और निशुंभ नाम के ये दोनों दैत्य देवताओं को बेकुंठ से बाहर निकाल दिया और स्वर्ग पर अपना आधिपत्य कर लिया। उस समय के दृश्य को वक्ता अपनी बोली से बोल नहीं सकता, लेखनी अपनी लेखनी से लिख नहीं सकती। उस समय की दशा का वर्णन करना तो बड़ा मुश्किल है। वो समय कितना दयनीय था जब इन देवताओं को ऋषियों को मुनियों को गुरु ब्राह्मणों को भक्तों को कोई सहारा नहीं मिला तो इनकी जिह्वा से एक ही शब्द निकला। वो शब्द निकला मां। मां शब्द निकलते ही पहले मां का प्रादुर्भाव हुआ, माता का अवतार हुआ। कौशिकी के नाम से माता कहने लगी, देवताओं आज से मेरा यही काम रहेगा कि इस धरती के ऊपर से राक्षसों का वंश मिटाऊंगी। और देख लो इस जीवन में जितने भी बड़े काम हुए ये सब नारी ने किए, मां ने किए। नारी में कितनी शक्ति है ध्यान दीजिए कि तू ही ब्रह्माणी बन कर कर वेदों की रचना करती माँ। वेदों की रचना करती माँ तू ही लक्ष्मी हो कर जग में। तू ही लक्ष्मी हो कर जग में धन धान्य संपदा भरती माँ। तू ही तो ब्राह्मणी बनकर के वेदों की रचना करती, तू ही लक्ष्मी बनकर के इस दुनिया को धन और संपत्ति देती है, तू ही रुद्राणी रूप धार करके जग का संहार करती है और तू ही फिर आदिशक्ति बनकर के जड़ जंगम जग उपजाती है। हे मां तेरा ही इंद्रजाल फैला जिसको हे लोग जगत कहते। सचराचर वस्तु समेत भुवन सब तुझ में ही तो तर रहते। हे मां तू वीणा वादिनी वाणी बन संगीत जगत में भरती है। निर्जीव प्रकृति को जीवन दे जीवित भी तू ही करती है। इस दुनिया में कितने लोग मिट गए लेकिन अमर कौन हुआ? कि यदि अमर हुआ तो वही हुआ कि जिसने ही तेरी तान सुनी, जिसने माँ तेरी तान सुनी, मिट गया हस्तिनापुर तब का, मिट गया हस्तिनापुर तब का, पर व्यास अमर है आज तलक। माँ भू पर आकर मिट गए सभी, जितने आए थे धनी गुनी, यदि अमर हुआ तो वही हुआ जिसने तेरी तान सुनी। लेकिन ये पापी माता की तान को सुनने वाले कहां थे? मातेश्वरी कोशी की जब अकेली साधारण नारी के रूप में हिमालय पर्वत पर जाकर के रहने लगी, अरे राजा शुंभ का एक दूत था जिसका नाम था सुग्रीव। सुग्रीव की नजर मां के ऊपर पड़ी, मां की सुंदरता को देख करके वो पापी अपने राजा के पास आया और कहने लगा, महाराज आज हिमालय पर्वत पर मैंने इतनी सुंदर नारी देखी महाराज कि उसके बराबर सुंदर नारी कोई नहीं। अगर वो नारी आपको मिल जाए तो आपका जीवन धन्य है महाराज, आपका जीवन धन्य है। और अगर वो नारी आपको नहीं मिले तो आपका जीवन कंकर और पत्थर से भी बदतर है। शुंभ कहने लगा, दूत क्या वास्तव में सचमुच वो इतनी सुंदर नारी है? कहने लगे, हाँ महाराज हाँ, आपके महलों में इस समय कोई कमी नहीं है, मुना मुक्तियों की ढेरी है महाराज, तो फिर वो मणि लेने में क्या देरी है? कहने लगे, जाओ धूम्रलोचन जाओ और उस नारी को लेकर मेरे पास आओ। धूम्रलोचन 60,000 सेना लेकर के गया। एक मां से युद्ध करने के लिए 60,000 सेना लेकर के धूम्रलोचन गया। भक्तों कितना बड़ा मर्द होगा वो, एक अकेली मां से लड़ने के लिए 60,000 सेना लेकर के जाने वाला धूम्रलोचन, पर ये नारी कोई ऐसी नारी नहीं थी जो ये पापी चाहते, जिस नारी को पकड़ करके और अपने घर में डाल लेते थे। कितनी मां बहनों का हरण करके इन पापियों ने आज उधम मचाया था, अन्याय किया था, आज उन सब बदला लेने के लिए ही तो मातेश्वरी का अवतार हुआ है। धूम्रलोचन गया और जाते ही पहले मां के हाथों का शिकार हुआ। धूम्रलोचन मां के हाथों से मारा गया, 60,000 सेना भी मां के हाथों से मारी गई। उस समय चंड और मुंड कहने लगे, उसी समय जाओ और जल्दी से जल्दी जाकर के। राजा शुंभ कहने लगा, चंड और मुंड तुम दोनों वीर हैं और तुम दोनों इतने महान वीर हो, इसलिए मैं तुम्हें जो भी कुछ कहता हूं वो ध्यान लगाकर सुनो। अब चंड और मुंड चले जा रहे हैं और जाकर के क्या कहते हैं? अब कहने लगा राजा शुंभ, जाओ कि जाओ देखो हे चंड मुंड, वह कौन लड़ा की नारी है। अरे जाओ देखो चंड मुंड, देखो वो कौन लड़ा की नारी है जिसके हाथों से मेरा धूम्रलोचन और 60,000 सेना मारी गई। जाओ देखो हे चंड मुंड, वह कौन लड़ा की नारी है, मेरे ही हाथों से जिसने यूं अपनी मौत बिचारी है। अच्छा है अच्छा है अपनी इच्छा से अगर वो कुमारी आ जाए, वरना मेरा हुक्म है यही वह करनी का फल पा जाए। जाओ देखो चंड मुंड जाओ और देखो वो कौन लड़ा तुम्हारी है, आज उसे अपनी करनी का फल मिल जाना चाहिए। चंड और मुंड अपनी बड़ी भारी सेना लेकर के और चले जा रहे हैं। अब तो चंड मुंड की सेना चली जा रही है, अरे चंड मुंड अपनी सेना लेकर के अपने रथ पर सवार होकर के चला जा रहा है, 1,00,000 सेना लेकर के और माँ से युद्ध करने के लिए जा रहा है। अब तो उसी समय जाकर के देखा, पर वहां मातेश्वरी कोशी की अकेली साधारण नारी के रूप में बैठी हुई थी। लेकिन माता ने जब आकर के सुना, तो सुनते ही पहले देखा कि अब तो चंड और मुंड सेना लेकर के आ रहे हैं। तो माता ने उसी समय क्या किया कि वे वहां सिंह पर चढ़ी हुई, अभी तक तो माँ अकेली थी, अब तो माँ का वाहन शेर, अरे माँ का वाहन शेर भी खड़ा हो गया उन राक्षसों की आवाज सुन करके के वे वहां सिंह पर चढ़ी हुई। भक्तों का मोद बढ़ाती थी, भक्तों का मोद बढ़ाती थी, भक्तों का मोद बढ़ाती थी। शोभा को सरचंद्र माँ की, शोभा को सरचंद्र माँ की, अपनी छवि से शर्माती थी। अरे देख लो मातेश्वरी जगदम्बा शेर की सवारी की हुई, शेर पे चढ़ी हुई माता जगदम्बा अपने भक्तों का मोद बढ़ा रही है। अपनी छटा अलग है। अब आकर के मातेश्वरी जगदम्बा अरे देख लो देख रही है, तो उधर से देखा क्या कि मेघों सा सिंह गरजता था। अरे जिस प्रकार से आकर के बादल गरजते हैं, वैसा शेर उन पापियों की आवाज सुन सुन करके गरज रहा है कि मेघों का सिंह गरजता था। रह रह कर क्रोधित हो मन में, और माँ की तलवार चमकती थी जैसे बिजली चमके घन में। देख लो आज आकर के बादल गरजते हैं, वैसे माता का शेर गरज रहा है और माँ की तलवार चमक रही है। कैसी? जिस प्रकार से आज वर्षा आने पर बिजलियां चमकती है, वैसे आकर के घनघोर घटा छा रही है। अब तो आकर के माँ की तलवार चमकती जा रही है, अब तो मातेश्वरी हर युद्ध के लिए तैयार हो रही है। इतने में तो चंड और मुंड आ गया हिमालय पर्वत पर आते ही पहले, और माँ जगदम्बा को कहने लगा क्या कि सुंदरी मानता हूं मैं ये, तुम कोई वीरा नारी हो, भय खाकर दब जाने वाली ध्रुवल चित की न कुमारी हो। चंड और मुंड आते ही पहले कहने लगे, सुंदरी मानता हूं, अरे तू कोई वीरा नारी है, मुझे मालूम है मेरी ललकार से सुंदरी तू जीत डर नहीं सकती, और मुझे मालूम है तेरे शरीर में दुर्बलता और डर और भय बिल्कुल नजर नहीं आता, लेकिन इसका मतलब ये ना समझना कि मैं शुंभ से युद्ध करते जीत गई। अब तुझे मालूम पड़ेगा क्या कि जय पाकर थोड़ी सेना पर तुम मत फूलो इतना देवी, क्या हुआ अब देखोगी तुम दानवपति कितना बलशाली। अरे अभी तो थोड़ी सी सेना पर तेने विजय प्राप्त करी है, इस थोड़ी सी सेना पर विजय प्राप्त करके इतना भी मत फूलो देवी कि मैंने दानवपति शुंभ को जीत लिया है। अब तुझे मालूम पड़ेगा, और क्या मालूम पड़ेगा कि दानवपति कितना बलशाली है तुझे मालूम है। तू बहुत ज्यादा अभिमान में आ गई, उछल कूद कर रही है, लेकिन याद है ना, अरे सरिता कितने ही पौधों को दिन रात बहा ले जाती है, सुन ले, अरे नदी में वर्षा के समय जब पानी बरसता है और नदी में जब बाढ़ आती है तो सरिता कितने पेड़ और पौधों को बहा कर ले जाती है, लेकिन उस नदी की भी गति रुक जाती है। कब? कि सरिता कितने ही पौधों को दिन रात बहा ले जाती है, दिन रात बहा ले जाती है, दिन रात बहा ले जाती है, पर पर्वत अड़ जाने पर ही, पर पर्वत अड़ जाने पर भी उसकी गति रुक जाती है। याद रखना, सरिता कितने ही पौधों को हर अपने पानी के बहाव में लेकर के बह जाती है, लेकिन जब सामने पर्वत आ जाता है तो उस नदी की गति और बहाव भी रुक जाता है। अरे मां ने जब ये सुना ना तो मां जगदम्बा तो हंसने लगी और हंसती हुई मां कहने लगी, हे चंडमुंड अपने जरा होश संभालो, तुमने मुझे नदी कहकर संबोधित किया, अरे मैं नदी कहां हूं रे, तू मुझे पहचान नहीं पाया, सुन ले मैं कौन हूं। अरे मां क्या कहने लगी, अरे मैं कोई ऐसी नदी नहीं अरे जो वर्षा में इतरा जाए, अरे थोड़ा सा पानी पाकर भी जिसमें बहिया सा आ जाए। पापी, अरे मैं ऐसी नदी नहीं हूं जो थोड़ा सा भी पानी बरसे और बहाव आ जाए, बाढ़ आ जाए। अरे मैं वो नदी नहीं जो वर्षा में इतरा जाए, मैं कौन हूं सुन ले, अरे मैं तो वो बिजली हूं रे दानव जो एक बार यदि गिर जाए तो पौधे क्या पर्वत तक के अरे टुकड़े टुकड़े हो जाए। अरे मातेश्वरी कहने लगी, सुन मैं तो वो बिजली हूं दानव बिजली, अगर एक बार अगर ये पौधे तो क्या तू पर्वत बना, अगर एक बार पर्वत पे गिर जाए तो उसके टुकड़े टुकड़े हो जाए। इसलिए याद रख के होता अगर यहां धूम्रलोचन तो बतलाता मेरे भी बल को और कहता तुमसे इस नारी ने अरे कैसे मारा दानव दल को। हे पापी, अगर यहां पे धूम्रलोचन होता तो तुझे बताता कि इस नारी में कितना बल है, और आज अगर के इस दानव दल को अरे दानव के दल को राक्षसों के दल को एक नारी ने अपने हाथों से कैसे मारा वो तेरे सामने कहता, पर वो तो मर गया, अब कुछ अपना पुरुष दिखलाओ तुम, हिंदू कुल की बालाओं के बल की आओ कुछ ता लगाओ तुम। हे पापी, अब देखना कि इन चूड़ी वाले हाथों में अब देखोगे अब कितना बल है, बल वालों से भी बढ़ बढ़ कर हम अबलाओं का ये दल है। कहने लगे, सुनो इन चूड़ी वाले हाथों में अब देखोगे कितना बल है, बल वालों से भी बढ़ बढ़ करके और हम अबलाहों का दल है। इतने में चंड कहने लगा, जानता हूं तुम्हारे अबलाओं का दल कैसा दल है ये मैं जानता हूं। किसको मालूम नहीं है कबला कितनी बलवाली है। अरे अबला, भारत की नारी कैसी नारी, कहने को तो वो नारी लेकिन एक पशु के तुल्य बिचारी है। कि पति पिता पुत्र आदि उसको हर रोज दबाए रहते हैं और दासी की नाई साई सदा परतंत्र बनाए रखते हैं। अरे हाँ, जानते हैं भारत की नारी कैसी नारी है। पति पिता के द्वारा, बेटे के द्वारा, भाई के द्वारा वो हर रोज घर में दबाई जाती है और पूरे घर में दासी की तरह गुलाम और परतंत्र बनी रहती है। बेटी रहती है तो पिता का बंधन उस पर रहता है, भाई का बंधन उस पर रहता है और जब उसकी शादी कर दी जाती है तो वहां जाती तो पति के बंधन में रहती है और गुलाम की तरह अपनी जिंदगी को बिता देती है। ऐसी गुलाम नारी के जो नारी ऐसी नारी है उससे क्या होना जाना है, आश्चर्य मुझे यह होता है उस नारी ने प्रण ठाना। अरे जो नारी ऐसी नारी है उस नारी से क्या होना है, अरे मुझे तो बड़ा आश्चर्य होता है कि आज ऐसी नारी ने राजा शुंभ से युद्ध का प्रस्ताव रखा। चंड के वचन सुनकर के मां जगदम्बा कहने लगी, पापी तेरे जैसा पापी ही आज नारी की महिमा को जान नहीं सकता। नारी अपने घर वालों से नीचा पद न कभी पाती है, हर नर से पहले इस दुनिया में नारी ही पूजा जाती है। नारी सच पूछो तो नर की सहचरी सदा कहलाती है, अरे वह कभी कभी उससे भी ऊंचा आसन पा लेती है। के नारी के लिए राम रघुवर ने लंका में प्रलय मचाया था, लंका में प्रलय मचाया था और नारी के लिए वीर पांडव ने, नारी के लिए वीर पांडव ने द्वापर में शस्त्र उठाया। नारी के लिए भगवान राम ने लंका में प्रलय मचाया था, नारी के लिए ही वीर पांडव ने द्वापर में शस्त्र उठाए थे। भगवान ने भी अवतार लेकर के और दुनिया में बता दिया कि नारी शक्ति का महत्व कितना है। राम सीता कोई नहीं कहता, कहते हैं सीता राम। कृष्ण राधे कोई नहीं कहता, कहते हैं राधे श्याम। राधे का नाम आगे है, हर सीता का नाम आगे है और आज भी दुनिया में यही वाणी है कि सब यही कहेंगे अब आगे, चाहे जो कुछ भी हो जाए तन जाए पर मां बहनों की अरे लज्जा न कभी जाने पाए। आगे भी सज्जन वीर महापुरुष यही कहेंगे, चाहे जो कुछ भी हो जाए तन जाए पर मां बहनों की लज्जा ना जाने पाए। ये वचन सुनते ही पहले और चंड तो बड़े गुस्से में आ गया और मां को ललकार लगाता हुआ कहने लगा कि खामोश क्यों ना तू रहती है जब काल शीश पर आया है, अरे क्यों चिड़िया बहुत चहकती है जब बाज आज मंडराया है। खामोश तू क्यों ना रहती है जब काल शीश पर आया है, क्यों चिड़िया बहुत चहकती है जब बाज आके मंडराया है। तुम्हारे मालूम है चिड़ियों की आवाज ज्यादा तेज हो जाती है कब? जब बाज आकर के मंडराने लगता है। इसलिए आज ये बाज तेरे सामने है और तू चिड़िया है। देखो पापी मातेश्वरी को चिड़िया कहकर बोलता है। और ये चंड कहने लगा कि जो झुकते आंधी के आगे, याद रख तेरे सामने आंधी है। ये आंधी, इस आंधी के आगे अब कोई बच नहीं सकता। कि जो झुकते आंधी के आगे वे ही पौधे बच पाते हैं, पर जो तन तन कर खड़े हुए वो वृक्ष सभी गिर जाते। अरे जो आंधी के आगे झुक जाते हैं वो पौधे बच जाते हैं, पर जो तेरे जैसे तन करके खड़े रहते, अरे वो वृक्ष सभी गिर जाते हैं। यह देखते ही पहले और वो पापी, अरे वो पापी मां को मारने के लिए अब तो अपनी सेना के सहित मां पर दौड़ पड़ा। धनुष बाण लेकर के मां की तरफ दौड़ा। इतने में देखा, अरे जिसके मरने का समय कभी बिल्कुल समीप आ जाता है तो उसका सारा ही ज्ञान ध्यान पहले ही दूर हट जाता है। जिसका मरने का समय नजदीक आ जाता है ना, अपने विपरीत बुद्धि विनाशकालीन जिसका विनाश आ जाता है, अरे उसकी बुद्धि पहले ही भ्रष्ट हो जाती है। आज इस पापी की बुद्धि भ्रष्ट हो गई, जब ही तो धनुष बाण लेकर के मां को मारने के लिए दौड़ा, अंत आ गया। देखो मां, असुरों की लीला देख देख मां का मुंह तमतमा उठा। अरे मानो जय का तम हरने का पर्वत पर रवि दमदमा उठा। मां ने देखा अब सेना मेरी तरफ दौड़ती हुई चली आ रही है, तो मातेश्वरी जगदम्बा का प्रादुर्भाव हो रहा है, मातेश्वरी का अवतार हो रहा है। कैसे अवतार हुआ माता का? के गर्जी जब मारो शिसे, हरि गर्जनी करी गंभीर, काला तत्क्षण हो गया उनका सकल शरीर। मातेश्वरी जगदम्बा जब गर्जना घोर करने लगी तो मातेश्वरी का शरीर बिल्कुल काला, अपने आप में एक आंधी अपने आप में चारी तरफ आकर के सन्नाटा छाया। उस काली अंधेरी रात में माता का प्रादुर्भाव, माता का अवतार होता है।